धर्म है वो तो स्वभाव तो अनादि अनंत कायम है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, वो स्वयं सिद्ध होता है। अनादि अनंत है, स्वयं सिद्ध है और वो नित्य कायम सदा ही रहता है और एक सदृश रहता है, उसमें कोई हीना दिखता नहीं होती है। और वो कैसा होता है तो स्वयं पूर्ण होता है, स्वाधीन होता है और कैसा है असीम अमर्यादित होता है, उसमें कोई लिमिट नहीं लेता। यानी स्वभाव में तो लिमिट नहीं है और वो स्वभाव पर्याय में प्रकट होता है तो उसके में कोई बिना मर्यादा का विकास होने का भी स्वभाव द्रव्य में पड़ा है। यानी हमें ऐसी चिंता है कि हम तो बाकी तो सब छोड़ेंगे पर ये तो स्वभाव जो है वो पर्याय में कैसे प्रकट होगा, तो पर्याय में प्रकट होने के सारे गुण और सारे धर्म द्रव्य में ही पड़ा है। इसका एक 47 शक्ति में एक नाम आता है, कौन सा? असंकुचित विकासक। उसका अर्थ क्या है? हाँ, विकास के लिए कोई मर्यादा नहीं, लिमिटलेस विकास। विकास है पर्याय में प्रकट होना। जैसे केवल ज्ञान हुआ तो ज्ञान गुण है, जानना 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 उसका कार्य है। तो ये जो शक्ति जो सामर्थ्य है केवल ज्ञान में कितनी सामर्थ्य प्रकट हुई, जो है वो सारी प्रकट हो गई। तो कितनी है वो? तो लिमिटलेस, उसमें कोई मर्यादा नहीं है। हाँ, लोक अलोक एक है इसलिए एक को ही जानने इतना ही उसका स्वभाव, ऐसा नहीं है। ऐसे अनंत लोकालोक होते तो भी केवल ज्ञान की पर्याय में जाने जाते, क्योंकि केवल ज्ञान की तो अनंतवा भाग प्रमाण ही शक्ति यूटिलाइज हुई है लोकालोक को जानने के लिए। उससे अनंत गुणा शक्ति अभी पर्याय में विद्यमान है। जैसे हम कहते आकाश में क्या उसका गुण है, अवगाहना देना। तो आकाश द्रव्य इतना अनंत प्रदेशी है और उसने अपने अनंत वे भाग में, लोकाकाश है वो पूरे आकाश द्रव्य का अनंतवा भाग है, उसने अपने अनंत वे भाग में सभी द्रव्यों को अवगाहना दी। ऐसे केवल ज्ञानी ने अपने ज्ञान के अनंत वे भाग में पूरा लोकालोक को जान लिया। हम लोकालोक में तो कितने देखें, सभी जीवों की, सभी अनंत काल की पर्याय, यानी सभी जो अनादि अनंत, जो अनादि से जो सिद्ध हुए हैं और अनंत काल तक जो आगे चलकर सिद्ध होंगे, उनके भी एक एक समय के पर्यायों को, उनके केवल ज्ञान को सबको जान लेते। ऐसे वो द्रव्य में ही शक्ति है, सामर्थ्य है। वो जो द्रव्य की सामर्थ्य जो है जिसको स्वभाव कहते हैं, उसी को यहाँ बार बार निज शुद्धात्मा कहते हैं, उसी को भगवान आत्मा कहते हैं। यानी प्रत्येक जीव को मेरा स्वभाव ऐसा है ये नक्की करना है, यानी मैंपना इस स्वभाव में स्थापित करना है। हम मैंपना किस में स्थापित करते हैं? शरीर में। अभी शास्त्र सुनने के बाद नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, पर उस जीव में और क्या शामिल कर दिया, ये मोहराद्वेष के परिणाम है, उस सहित मैं हूँ ऐसा मान लिया और मैं अशुद्ध हो गया मानता है। उस काल में, हाँ पर्याय में वो है, उस काल में भी स्वभाव परिपूर्ण है और वो स्वभाव रूप मैं हूँ, मैं इतना ही, उसमें बाकी कुछ नहीं शामिल करना है। बाकी राग द्वेष को भी वहां पर कहा, ये इन्हें अपना अनुभव करना है, अपने सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तब मैं किस में स्थापित करना। देखो ये मान्यता में श्रद्धान में लेने की बात है, बोलने की बात नहीं है। बोलने में तो हम ऐसा ही कहेंगे ना कि मैंने भोजन कर दिया है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो करना है, वो बोलने के हम केवल वो भाषा सुधारने की बात नहीं है, अभिप्राय हमको लेना है और बाकी चीजें होते हुए करते हुए भी जिसको हम कर रहा है कहेंगे, उस समय में अपना जो मैं पना जो है वो अपने स्वभाव में अगर हम स्थापित करते हैं तो वो दोनों ही बातें चलती है। ऐसा नहीं कि वो बाहर हम नाटक कर रहे हैं और अंतरम में कुछ है, वो तो शुरुआत में तो ऐसा ही होगा। यहाँ मैं यानी मैं जीव द्रव्य ऐसी विचारधारा चलेगी और बाहर तो मनुष्य पने के सारे कर्तव्य निभा रहा है, उसमें कोई ये मायाचारी नहीं है। क्योंकि गृहस्थ जीवन में तो ऐसे ही विधा लगेगा कि बाहर कोई अन्य बात चल रही है और मैं तो ये बस मेरा तो जानने का कार्य है और बाकी सभी चीजें होते हुए भाषित होती है। तो ये कहना, ये मैं जो है जो स्वभाव भाव है जिसको भगवान आत्मा कहते हैं उसी को ब्रह्म कहते हैं। क्योंकि आज का लक्षण जो है धर्म का लक्षण, धर्म नहीं कह रहा हूँ, धर्म का लक्षण उसका नाम क्या है, उत्तम ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्म यानी आत्मा, कौन सा आत्मा, वो रागी द्वेषी वाला नहीं, ये स्वभाव भाव रूप जो निज आत्मा है उसको ब्रह्म कहा है। उस ब्रह्म में चरना, चर्या यानी उसमें चरना, रम्मा रमना, एकाग्र होना, लीन होना। तो ये हम ज्ञान की हमारी जानने रूप जो पर्याय है वो अभी तक कहाँ लगी थी, इंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर लगी थी। तो इंद्रिया किसको जानने में निमित्त है, जानने का कार्य तो आत्मा का है, पर इंद्रिया किसको जानती है पहले मैं पहले नक्की करो, बोलो हाँ क्या कह रहे, पर द्रव्य को, आकाश द्रव्य को, काल द्रव्य को, नहीं धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को, तो हाँ हाँ रूपी पदार्थ यानी पुद्गल को जानने में निमित्त है। वो पुद्गल में भी और स्थूल पुद्गल को जानेगी और भी इंद्रिया में कितनी कितनी मर्यादा है, सामने वाली चीजों को जानेगी। इंद्रियों के द्वारा भूत भविष्य का नहीं जान रहे हम, आपको एक बार बताया था मति ज्ञान का दूसरा एक नाम है आभिनिबोधिक ज्ञान। आभि यानी अभिमुख, इंद्रिया अपने विषय के सन्मुख होकर उसको जानती है। आंखों से ये बाहरी चीजें दिखाई चल देती है पर आंखों के पीछे अंदर जो कुछ चल रहा है, ये रेटिना के आगे वो जो लिक्विड वगैरह चाय पीछे वो तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना, ये पीछे खोपड़ी में क्या क्या ब्रेन में हो रहा है वो कुछ नहीं दिखा रहा है। कहाँ से दिखता है उसकी वो जो कुछ पर्टिकुलर रेंज है उसमें उसको दिखाई देता है। कान जो सुनता है वो कहाँ बाहर की बातें को सुनता है, अंदर जो धड़ धड़ चल रहा है ना सारा जो शरीर में जो कुछ कार्य हो रहा है उसको नहीं सुनती है। ग्रहणेन्द्रिया किसको सुनती है, अगर अंदर का उसको पता चले तो भोजन भी हजम नहीं हो जाए। तो इंद्रिया बहिर्मुख है और वो बहिर्मुख में किसको जानती है, कुछ पुद्गलों को जानती है। अभी यानी सन्मुख होकर जानती है, अभी निबोधिक नी यानी निश्चित, हरेक इंद्रिय का अपना अपना विषय निश्चित है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा हम वो काला पीला जानते कि नहीं जानते, नहीं जानते, हल्का भारी जानते हैं, यानी जो स्पर्श गुण की पर्याय है उसको हम जानते हैं। रसना इंद्रिय के द्वारा वो खट्टा मीठा उसका ज्ञान चलेगा। तो हरेक इंद्रिया अपने निश्चित विषय को जानती है और उसके सम्मुख होकर जानती है, उसमें भी कितनी लिमिटेशन होती है। आप कितना दूर तक का देख सकते हैं, लिमिट है, कितनी लिमिट है, मैक्सिमम कितने डिस्टेंस का देख सकती है आप, बोलो थोड़ा बहुत ना कुछ भी कहो, एक माइल, दो माइल, चार मीटर, हंड्रेड मीटर, और वो सूर्य और चांद समझ जाते हैं ना, जो नहीं उसकी जो योग्यता है वहां तक वो जान सकता है। इंद्रियों को तो लिमिट है उसमें, और वो किसको जानती है, तो पुद्गलों को जानती है। तो ये इंद्रिया इंद्रियों के द्वारा आत्मा जानने में आएगा कि नहीं, ये पहले हमें नक्की करना है। हमारा सारा जो जानना चल रहा है वो इंद्रियों के द्वारा चल रहा है, मन के द्वारा। इंद्रियों के द्वारा जो जाना है उसको हम फिर यानी स्मरण में ला सकते हैं, पहले जो जाना है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, स्मरण में लाना है जिसको हम स्मृति कहते हैं, फिर उस पर हम तर्क लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि यहाँ धुआं दिख रहा है तो अग्नि होनी चाहिए, आदि आदि जो सारी जो है, तो ये तो बाह्य पदार्थों के बारे में है। और हमें ब्रह्म यानी आत्मा को जानना है तो इंद्रियों के द्वारा जानते जानते आत्मा जानने में आएगा कि नहीं आएगा, पहले नक्की करना है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो हम आप छद्मस्थ हैं, एक समय में आत्मा का भी यानी उपयोग जो है वो या तो स्व को जानेगा या पर को। भगवान जो है केवल ज्ञानी, वो स्व पर एट ए टाइम उनका उपयोग है, परंतु हमारे में लिमिटेशन है। या तो ज्ञान उपयोग है वो स्व में लगेगा या पर में लगेगा, और वो भी एट ए टाइम एक इंद्रियों के द्वारा ही जानता है। नहीं समझे? आपको तो पांचों इंद्रियों का एट ए टाइम ज्ञान होता है कि नहीं होता है? आप क्या कहते हैं? नहीं, अभी आजकल के बच्चे बहुत होशियार, पांचों इंद्रियों का ज्ञान एट ए टाइम होता है उनको? नहीं होता? मैं बताती हूँ आपको। पहले पहले टीवी ऑन कर देते हैं तो देखना, यानी चक्षु इंद्रिय का भी कार्य चल रहा है, श्रोत्र इंद्रिय का भी चल रहा है, एसी या पंखा लगाते हैं, स्पर्शन इंद्रिय का भी विषय चलता है, फिर भोजन सामने लेकर बैठते हैं तो वो तो रसन इंद्रिय का भी कार्य चल रहा है, और वो तो घ्राण इंद्रिय का भी कुछ, वो कुछ लगाते हैं ना, वो भी चल रहा है। तो एट ए टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मेरा प्रश्न है। पीछे कोई उत्तर देंगे? ये पंचेंद्रिय जीव, पांच इंद्रियों से संबंधित ज्ञान जो हो रहा है एक समय में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मेरा प्रश्न है। नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, ये योग्यता ही नहीं। एट ए टाइम एक समय में एक इंद्रियों के द्वारा जानने का कार्य चल रहा है, पर ये उपयोग इतना फास्ट घूमता है, यानी श्रोत्र इंद्रिय देखा, फिर कान के प्रति, सुनने के प्रति उपयोग गया, फिर घ्राण इंद्रिय के प्रति गया, फिर वो जो कोई अन्य अन्य इंद्रियों के द्वारा, जैसे आपकी जो एनिमेशन को या जो फिल्म जो बनती है उसमें एक एक उसके जो जुदी जुदी होती है फ्रेम, और उसको इतने जोर से यानी इतने फास्ट घुमाते हैं कि हमें वो तो चलती हुई चलचित्र जिसको कहेंगे वो ऐसा लगता है। या अंधेरे में ये जलती हुई अगरबत्ती आप जोर से घुमा, कभी घुमाई है क्या? नहीं। घुमा के देखो क्या दिखेगा? पूरा सर्कल दिखता है, वो जो उसके जलाइए ना उसके नोक, तो ऐसा पूरा सर्कल दिखता है। क्यों? वो संस्कार कहते ज्ञान का, वो रह जाता है, पहला इम्प्रेशन रहता है और फिर आगे की बात साथ उसका चल जाता है। ऐसा ही ये पांचों ही इंद्रियों के द्वारा ये उपयोग इतना फास्ट, हमारा एक इंद्रिय के दूसरा इंद्रिय तीसरा इंद्रिय इस तरह, और हर एक दो इंद्रिय ज्ञान के बीच में दर्शन उपयोग भी होता है, वो भी अंतर्मूल तक होता है, एक समय के लिए नहीं होता। तो अंतर्मूल कितना छोटा होगा कि हमारे यानी वो कैच भी नहीं होता है, ख्याल में? यानी हम देख रहे हैं, फिर बीच में दर्शन उपयोग पूर्वक फिर सुनने का कार्य हुआ, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि एट ए टाइम हमारा हो रहा है। यहाँ क्या कहते हैं कि हमारा जो उपयोग इंद्रियों के प्रति चल रहा है, तो विषय उस इंद्रियों का जो विषय हो क्या है, सारा पुद्गल है, और हमें तो अपने आत्मा को जानना है। तो पहले में पहले क्या करना पड़ेगा? केवल उपयोग खींचा की बात नहीं है, उसके पहले वो सारा तत्व निर्णय जो भी हमने बहुत बार उसकी बात की थी, ये सात तत्व क्या है, मैं कौन हूँ, इसका पूरा ही जब निर्णय होगा, और केवल हमने सुना है पढ़ा है वो निर्णय से कुछ नहीं होगा। तो इंद्रियों के द्वारा जो हमारा ज्ञान बाहर की ओर जो उपयोग लग रहा है, वहां से उपयोग को समेट कर कहां अपने आत्मा, ने जिसको आत्मा किसको कहा, वो स्वभाव का त्रिकाली जो स्वभाव है उसको आत्मा कहा, उसमें लगाना है, यानी ज्ञान उपयोग उसी में स्थिर करना है, तब जाके हमें आत्मा का अनुभव होगा। पर हमने चाहे यहां से उपयोग हटाया, यहां लगाया, हमें जो लगता है हमारे कंट्रोल में है, परंतु यहाँ बैठे बैठे कहीं बाहर से कोई आवाज आती है या कोई यहाँ धड़ाक कोई गिरने की आवाज होगी तो क्या हमारा उपयोग वहां चला जाता है? अन्य भी जो कोई बातें होती है हमारा उपयोग चला जाता है। तो बाहर ये सभी इंद्रियों के द्वारा जो जानने का कार्य हो रहा है, तो वहां से उपयोग हटकर अपनी ओर कैसे लग सकता है? तो कहते उसकी महान रुचि हुए बिना नहीं लग सकता, उसकी महत्ता आए बिना नहीं लग सकता। कल किसी भाई ने बताया ना, हम मालूम ही नहीं इस पुस्तक में है तो हम उसका आदर कैसे करें? तो हमें मालूम ही नहीं स्वभाव क्या है, स्वभाव की कैसी महिमा है, तब तक वहां उपयोग हमारा कैसा चला जाए? क्योंकि अभी तो पूरी दुनिया में बाहर की चकाचौंध चल रही है और उसी की महत्ता भाषित होती है। अभी यहाँ अभी जगह के भाव क्या हुए, ये कैसी कैसी जगह, कैसे कैसे ये सभी बिल्डिंगें खड़ी हो रही है ना, महत्ता किसकी लग रही है, ये सब बाहरी चीजों की। और कहीं दुनिया में जाते हैं बाहर जाते तो इसी की चर्चा चलती है कि कितने करोड़ों का क्या क्या चल रही है बात। जिसको ये फिगर्स की रुचि है ना, उसको जर्नलिज्म अवश्य सीखना चाहिए। आप तो करोड़ों और अब्जों में डील करते हैं, हम तो असंख्यात और अनंतों में डील करते हैं, हमें ये करोड़ों में वगैरह रुचि नहीं आती। तो तो यहाँ हमें ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चलना है, वही धर्म है, तो उसके लिए इंद्रियों के द्वारा जो हमारा उपयोग बाहर की ओर जा रहा है उसको वहां से समेट कर अंतर में लगाइए। लगाना चाहिए उपदेश की भाषा है, पर वहां लगेगा तब जिसकी महिमा, अपूर्व महिमा आएगी कि दुनिया में सर्वोत्कृष्ट मैं स्वयं हूँ। वहां गुरु के द्वारा, भगवान के द्वारा, शास्त्र के द्वारा हमें ये जो माल मिला है, उपदेश मिला है, परंतु उनसे भी अपनी अपूर्व महिमा आए बिना उपयोग उनसे हटकर अपनी ओर नहीं लगेगा। क्योंकि हमने देखा है जो साक्षात भगवान के समोशरण में जो जीव जाते हैं, सुन रहे हैं, वहां भी कोई वहीं पर समय दर्शन प्राप्त करता है, कोई वहीं पर बैठे बैठे पांचों गुणस्थान में चला जाता है, और वो गुणस्थानों का आरोह या सम्यक्त्व का जो उसकी प्राप्ति है वो अंतर्मुख परिणामों में आत्मा में लीनता के बिना नहीं होती। तो उस समय उन्होंने सुनने के प्रति अपना उपयोग हटाकर यहाँ लगाया कि सुनते सुनते उनको समय दर्शन हुआ है, मेरा प्रश्न। क्योंकि सुनना ये तो इंद्रिय ज्ञान है, तो सुनने ने इंद्रियों के तरफ जो उपयोग चल रहा था वहां से हटकर, क्योंकि वहां सुनने में आया कि तू भगवान आत्मा है, तो वो सुनने जो इशारा जहां किया है उसका लक्ष्य किया। क्योंकि हम बच्चे को बताते देखो चांद वहां है, तो बच्चा कहां देखता है, उंगली की तरफ, तो उसको चांद कब देखेगा, तो जहां इशारा किया है भगवान ने, जिस भगवान आत्मा की यानी अपने स्वयं की जो हमारे निज आत्मा की बात बताई है, तो वाणी का लक्ष्य छूटकर अपने आत्मा का लक्ष्य हो जाए तो हम उस वाणी को निमित्त कहते हैं। तो वो अगर लक्ष्य ही नहीं होता है, बस भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की वाणी के यानी शास्त्र का विनय करेंगे, पर विनय तब कहेंगे ना कि जब उसमें क्या बताया है वैसा हम फॉलो करेंगे, तब हमने भगवान की विनय कही। फिर उसके बाद में पश्चात में तो उनके प्रति बहुमान आए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा जो अपूर्व ऐसा मोक्ष मार्ग जिनके निमित्त से प्रकट होता है उनकी तो कितनी विनय तो होती ही है, और यही व्यवहार होता है लौकिक में भी जिसके हम उपकार का स्मरण करते हैं, और यहाँ तो जिसको अनंत भवों का जन्म मरण जिनके कारण मिल जाता है इनके प्रति कितना बहुमान होगा। इसलिए हम भगवान की जो पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, उनकी विनय करते हैं, क्योंकि ये हमारा स्वरूप इन्होंने बताया। पहले बताया था कि जो देह में आत्मबुद्धि होती है वो किसी को सिखाने नहीं पड़ती, वो अनादि से नेचुरल चली आ रही है। पहले प्रश्न भी पूछा था ना, मिथ्या तो अनादि का है, वो किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, परंतु सम्यक दर्शन के लिए आवश्यक कंडीशन है कि अपना स्वरूप सर्वज्ञ भगवान की जो वाणी चली आ रही है वो डायरेक्ट तीर्थंकरों के मुंह से सुने, आचार्यों के सुने, अन्य मुनियों के द्वारा सुने, या आत्मानुभव पांचवे या चौथे गुणस्थानवर्ती जीवों के द्वारा सुने, सुनने की कंडीशन है, पढ़ने की भी कंडीशन नहीं है। क्योंकि पढ़ने की कंडीशन क्यों नहीं है, हाँ जिसने कभी पहले सुना हुआ होगा इस भव में या पूर्व भव में, और उसके हो सकता है कि पढ़ने में वो बात आती तो उसको अंदर भाषित होता है, उसकी सत्यता उसका अर्थ ख्याल में आता है, ये बात संभव है। परंतु सुनने की मुख्यता क्यों है, क्योंकि अनादि से जो कल्पना जो दृढ़ता से मिथ्यात्व चल रहा है, कुछ भी शब्द भी पढ़ते हैं तो अपनी जो कल्पना है वैसा उसका अर्थ लगाते हैं, केवल शब्दों के द्वारा। क्योंकि हमने कल आपको बताया ना द्रव्य शब्द का अर्थ है द्रव्य दृष्टि करना, तो द्रव्य ने स्वभाव उसकी दृष्टि यानी उसमें प्रतीति करनी है, उसके बदले द्रव्य ने पैसा की दृष्टि करता है, पैसे पर नजर है। तो मैं जब प्रैक्टिस करती थी तब की जो सत्य घटी हुई घटना बताती हूँ, तब तीन लड़कियां आई कॉलेज गोइंग गर्ल्स और आकर मुझे पूछती है कि आप तो हेयर स्पेशलिस्ट हो ना, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं हेयर स्पेशलिस्ट हूँ, तो आपने बाहर बोर्ड पर क्यों लिखा है, आप बोर्ड पर लिखती हो और आप यहाँ मना करती हो। मैंने क्या लिखा है बोर्ड पर मैं भी देखूँ, क्योंकि मुझे भी जो थोड़ा ज्ञान हो जाए, तो बाहर लिखा था बाल रोग तज्ञ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो बाल का अर्थ है बालक और बाल का अर्थ है हेयर, तो उन्होंने क्या समझा ना तो इन्हें जो हम पढ़ रहे हैं वो उसका अर्थ हम हमारी कल्पना के अनुसार लगाते हैं। इसलिए हमेशा सुनने की मुख्यता है प्राथमिक सुन के, क्योंकि सामने वाले के जो यानी जो सुनने में जो अभिप्राय व्यक्त हो सकता है क्योंकि एक शब्द है हम कहाँ पर जोर देकर बोलते हैं, हम कहेंगे ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो ग्रंथ है वो मेरा है, यह मोक्ष मार्ग यानी वो आपके हाथ में वो मेरा नहीं, यह मेरा है। यहाँ हम क्या कहें, यह जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक मेरा है, परंतु ये यहाँ जो संयम प्रकाश ग्रंथ दिखा लिखा ये जो रत्न वो मेरा नहीं है, यानी ये ग्रंथ मेरा है आपका नहीं। हम जिस एक वाक्य में कहाँ जोर देते हैं उसका अर्थ जुदा जुदा हो सकता है ऐसे, परंतु जो पढ़ने वाले को उसका अर्थ वो ख्याल में आएगा ही, ऐसी बात नहीं। कल हमने देखा था ना जो अपना विषय यहाँ चला था कि सम्यक तो है वो सूक्ष्म परिणाम है और केवल ज्ञान गम्य है, और उसका बाह्य चिन्ह आत्मानुभूति है। तो यहाँ तो ज्ञान की पर्याय को सम्यक्त्व का लक्षण कहना, इसको बाह्य चिन्ह कहा, परंतु वो बात छूट जाती है, और छूट जाती है तो उसमें बिल्कुल विरुद्ध अर्थ निकला कि आत्मानुभूतियों पता ही नहीं चलता जीवों को, ऐसी बात मान्यता हो गई। तो मान्यता होगी तो उल्टी होगी, क्योंकि ज्ञान ज्ञान का लक्षण ही स्वसंवेदन है और वो प्रकट लक्षण है। मिथ्या दृष्टि को भी अपने को ज्ञान होते हुए भाषित होता है, और वहां तो मैं ज्ञान मैं हूँ ऐसा भाषित होता है। तो यहाँ ये उत्तम ब्रह्मचर्य के जो विषय में कोई प्रश्न है, आत्मानुभूति के समय स्व को जानता है पर को नहीं, स्व पर प्रकाशत्व शक्ति उस समय कैसे है? देखो आत्मानुभूति के समय स्व को निश्चित किया है जिसको हम भगवान आत्मा है, परंतु ज्ञान जो है वो प्रमाण ज्ञान है, उसमें वो पर्याय को भी जानता है कि नहीं जानता। अगर वो स्वभाव को स्व कहा तो पर्याय को हमने पर कहा है, तो पर्याय में जो अनुभूति हुई, पर्याय वो स्व मिलकर अभेद ऐसा है, उसकी अनुभूति होगी क्या? तो ये सम्यक ज्ञान का विषय स्व पर दोनों है। तो स्व को जाना है, ये सुख स्वरूप आनंदमय मैं हूँ ऐसा जाना है, तो ये राग रूप मैं नहीं हूँ ऐसा भी उसी समय जाना है, अन्य रूप मैं नहीं हूँ उसी समय उसने जान लिया है, तो उसकी स्व पर प्रकाशक शक्ति तो वहां पर भी विद्यमान है। हाँ, उपयोग रूप जो है वो उपयोग स्वर पर में उसमें क्रम पड़ता है, किसके? छद्मष्टों के, सर्वज्ञों के क्रमिक उपयोग नहीं है। यहाँ तो दर्शनोपयोग पूर्व ज्ञान उपयोग होता है, और केवली के केवल दर्शन केवल ज्ञान दोनों उपयोग एट ए टाइम चलते हैं, उसमें कोई विरोध नहीं आता है। एक और भी प्रश्न ले लेते हैं, क्या मंद कषाय ने शुभ भाव से कर्म की निर्जरा होती है क्योंकि? तो आपका क्या प्रश्न है, यानी क्या कहना है? आगे का प्रश्न बाद में पढ़ते। मंद कषाय का अर्थ क्या होता है? कषाय उनकी मंदता, मंदता हुई है यानी वो राग द्वेष चल रहे हैं। कषाय की मंदता समय दृष्टि को भी हो सकती है, मिथ्या दृष्टि को भी हो सकती है। तो हम मिथ्या दृष्टि की बात लेते हैं, तो उसने कषाय की मंदता जिसको हम कहें सदाचारी जीवन जी रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा विस्सा नहीं आता उसको, आता नहीं करता नहीं ऐसा भी नहीं आता भी नहीं उसको, मंद कषाय ऐसा हम कहते हैं, तो उसके निर्जरा चल रही है कि नहीं चल रही है? बोलो, चल रही है। हाँ, मिथ्या दृष्टि की निर्जरा चल रही है। ये जो सामान्य से कर्मों का खिरना है, हर समय एक समय प्रबद्ध एक लौट लेता है और एक छोड़ता है, जो उदय रूप होकर खिरना उतना ही चल रहा है। मोक्ष मार्ग में जिसको संवर पूर्वक निर्जरा कहते हैं, वो निर्जरा मिथ्या दृष्टि के होती ही नहीं। कितना भी मंद कषाय क्यों ना हो, कितने भी व्रतादि आचरण क्यों ना हो, जब तक मिथ्या तो है तब तक केवल आश्रय बंध है। जब समय दर्शन होता है तो विशिष्ट आश्रय रुक गया, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का आश्रय रुक गया है, उतना संवर हुआ है, तो उसके और बाकी अप्रत्याख्यान वगैरह का आश्रय चल रहा है, अविरति का आश्रय, कषाय का आश्रय, योग का आश्रय वो चल रहा है, तो उसके आश्रय भी है, बंध भी है, संवर भी है, निर्जरा भी। यानी निर्जरा कब शुरू होगी? समय दर्शन होने के पश्चात ही निर्जरा शुरू होगी। केवल मंद कषाय है इसलिए उसकी निर्जरा नहीं होती कर्मों की। देखो, क्योंकि व्यवहार में संकट दुख आदि दूर होते प्रतीत होते हैं, इस संकट आदि दूर होना ये निर्जरा का स्वरूप नहीं है। संकट आदि दूर होना, क्योंकि हम देखते हैं ये जो संकट ये तो हमें भाषित होते हैं संकट, किसी प्रतिकूल संयोगों को हमने संकट मान लिया है, यह हमारी मूल में मूल भूल है, और ना उस प्रतिकूल संयोग के कारण हम दुखी है, हम जो दुखी अपने मोह राग और द्वेष के कारण दुखी है, और वही भयानक संकट है, परंतु अपने ही राग द्वेष हमको कभी संकट रूप प्रतीत नहीं हुए। उस अगर संकटों का लक्ष्य हटाकर अपने आत्मा में स्थिर हो जाए तो हमें सुख की अनुभूति हो जाएगी, वो संकट संकट नहीं रहेंगे। जैसे पार्श्वनाथ मुनिराज थे, उन पर जो कुछ बाह्य में वहां उपसर्ग हो रहा था, ओले शोले पत्थर पानी, तो कहते हैं कि वो दूर कैसे हुए, मंद कशा से दूर हो गए नहीं, जब उसका समय आएगा तो वो स्वयं वो दूर, परंतु उसका लक्ष्य ही नहीं किया, वो तो अपने शुद्ध भाव में विराजमान थे, परंतु वहां क्या हो रहा था, वो जो कमठ है जो उपसर्ग करने वाला, वो द्वेष में जल रहा था, अपने द्वेष में जल रहा था, और वहां धर्मेंद्र थे, पद्मावती थे, वो उनके प्रति राग भाव में जल रहे थे, दोनों ही जल रहे थे, दोनों ही दुखी थे, दोनों ही आकुलित थे, और भगवान कैसे थे, अपने शुद्ध स्वभाव में साम्य भाव में विराजमान थे, सुख का अनुभव ले रहे थे। और उनके ओले शोले क्या करते, जब पहले दिन का बालक, जब तीर्थंकर जो होने वाला जीव जन्मता है, तो उस बालक को वो इंद्र इंद्राणी लेके जाते ना, कहाँ, पांडुशिला मेरु पर्वत पर, और वहां अभिषेक होता है, जलाभिषेक करते हैं, वो कौन से कलशों से करते मालूम है, कितने कलशों से करते हैं, 1008, और एक एक कलश कितना बड़ा होता है, 8 योजन का एक कलश, आप इमेजिन कर सकते हैं, 1 योजन होता है 4 कोस का, यानी 1 योजन यानी 8 माइल, और ऐसे 8 योजन वाले कलश होते हैं जो वो न्यूबॉर्न बेबी पर डाल रहे हैं, उससे कुछ नहीं हुआ, और ये बरसात और ओले शोले उससे क्या होता, उनके वज्रेश्वर नारा सनन वाला शरीर है, तद्भव मोक्षगामी है, कुछ नहीं हो सकता है, परंतु हम क्या, अरे भगवान का संकट निवारण किया, चलो हम उनके पीछे चले, हमारा भी संकट निवारण हो जाए, क्या करें। यहाँ क्या कहते हैं, व्यवहार में संकट दुख आदि दूर होते प्रतीत होते हैं, वो अगर निर्जरा, देखो वहां भगवान शुद्धात्मा में विराजमान थे, इसलिए निर्जरा होती, वो निर्जरा जो शुद्ध भाव से होती, किसी भी शुभ भाव से निर्जरा नहीं होती। हाँ, जिसके शुद्ध भाव प्रकट हुआ है उसका जो शुभ उपयोग के काल में भी उनकी निर्जरा चल रही, जो मुनि है या पांचवे गुण स्थान के ऊपर शुभ या अशुभ भाव भी चल रहे हैं, कंटिन्यूस उनकी गुण श्रेणी निर्जरा चलती है। चौथे वाले को कभी कभी होती, अभी करना नहीं उसका विषय नहीं है, परंतु ये जो हमें ऐसा लगता है कि संकट और दूर हो रहे है, तो दूर हो रहे वहां कर्मों का जो उदय है वो चेंज होता रहता है, कभी एक समान उदय नहीं, तो कभी साता कभी असाता का उदय भी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में पलट जाता है, बाय चांस ऐसा हो जाता है कि मंद कषाय किए इसलिए उदय पलटा, ऐसा भी नहीं है, और कर्म की निर्जरा होने से उदय पलटा, ऐसा भी नहीं होता है। जैसे मैना सुंदरी श्रीपाल का सिद्ध चक्र विधान करने से कोढ दूर हुआ था, ये विधान करने से कोढ दूर हुआ ये मान्यता ही गलत है, क्योंकि वो तो पूजा शुभ परिणाम है, वो तो यथा योग्य उनके शुभ परिणाम चल रहे थे, और वो शरीर की अवस्था वैसे होने का समय आ गया था, तो उसके पे उससे इसका कोण दूर हुआ, वो अगर समय दृष्टि है तो सिद्ध चक्र विधान वो किसी इच्छा से करेंगे वो तो काम बंधेगा, सहज रूप से जो उनके पूजा विधान का परिणाम आता है और समय दृष्टि है तो पूजा विधान करते हैं, तो सहज रूप से ऐसे बनाव बन गया कि वो दूर हो गया। परंतु यहाँ क्या करते हैं, हमारे घर में किसी बीमारी हो गई, जो कुछ हो गया, तो विधान करते हैं तो हमारा भी रोग दूर हो जाएगा, ऐसा मानते हैं। नमोकार मंत्र भी गिनने से, ऐसा नमोकार मंत्र कहो तो न कहने से ऐसा होता है, वैसा कहने से वैसा होता है, बीमारी दूर करने के लिए हम मंत्रों को उच्चार करते हैं, ये तो हमारा महामिथ्या परिणाम है और महापाप बांध रहे हम, क्योंकि मैं शरीर हूँ और ये जो महान मंत्र जो है उसको शरीर की व्याधि दूर होने के लिए मैं यूटिलाइज करती हूँ, देखो तो तुम्हारा करने में क्या जाता है, दवा तो खा ही रहे ना, इसको भी करो ना, क्या जाता है, अरे पर वो शरीर की व्याधि के लिए क्यों, नमोकार मंत्र जपने के लिए किसने ना कहा है, परंतु हमारा एम क्या है, शरीर की विशिष्ट व्याधि उसके कारण दूर हो जाए, ये उसके पीछे अपना मतलब उसके छिपा है, वो तो शरीर में आत्मबुद्धि और दुर्लभ हो रही है, यहाँ नमोकार मंत्र जपने का निषेध कहा, वहां तो उत्तम है, बिल्कुल जपो, उसके तो भव का रोग दूर हो जाए, परंतु यहाँ तो मैं शरीर हूँ और मेरा रोग दूर करना है, ऐसी मान्यता पूर्व के बात चल रही है, चल रहा है हीलिंग वगैरह सब चल रहा है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, देखो ये ब्रह्मचर्य की बात चल रही थी ना, यहाँ 2-3 ग्रंथों के उद्धरण दिए है, अनगार धर्मामृत नाम के ग्रंथ में उन्होंने एक संस्कृत श्लोक भी दिया, मैं डायरेक्ट उसका अर्थ बताती हूँ। परद्रव्यों से रहित शुद्ध बुद्ध अपने आत्मा, यानी मैं आत्मा यानी वो स्वभाव भाव, वो कैसा हूँ मैं, परद्रव्यों से रहित हूँ। क्यों रहित हूँ, प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वचतुष्ट जुदा जुदा है, तो परद्रव्यों से तो रहित हूँ ही हूँ, पर्याय में जो मोह राग द्वेष है उससे भी मैं जुदा, उसको भी परभाव परद्रव्य भी कहने में आता है अध्यात्म की अपेक्षा से। तो परद्रव्यों से रहित शुद्ध बुद्ध अपने आत्मा में चर्या, चर्या का अर्थ क्या है, चरना, लीन होना, उसमें एकाग्र होना, उसी में कॉन्सेंट्रेशन करना, उसे ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। और सभी व्रतों में श्रेष्ठ, व्रत किसको कहते हैं, विरति, परद्रव्य, विरति ने हटना, परद्रव्यों से प्रभावों से हटकर अपने आत्मा में लीन हो जाना, उसी को व्रत कहते हैं, उसी को समाधि कहते हैं, उसी को वो योग यानी जिसको हम योगी कहते हैं, और उसी को ये सभी नाम तप उसी को कहेंगे, संयम उसी को कहेंगे, ब्रह्मचर्य उसी को कहेंगे। तो इसका जो ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करते हैं वे अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करते हैं, यानी जिसने अपने आत्मा रूप ब्रह्म में चर्या यानी लीनता नहीं की है और बस बाह्य में कोई व्रत आदि अंगीकार करता है ये नहीं करना ये ब्रह्मचर्य, तो ये सच्चा ब्रह्मचर्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य धर्म है वो ब्रह्म में चरने से ही उत्पन्न होता है। अन्य भी इन्होंने ये कुछ रेफरेंसेस दिए हैं कि भगवती आराधना में लिखा है ऐसा है, जीव ब्रह्म है और देह की सेवा से विरक्त होकर, क्या कहा, जो चमड़ा कमाता है ना मराठी में चमड़ा कमाना, यानी क्या, वो चमड़े में कुछ पॉलिश विलिश करता है, क्या क्या करता है, वो साफ सुफ करता है, और हम क्या करें, दिन रात क्या कर रहे, ये चमड़े से लिपटा हुआ दे रहे है, उसी की पॉलिशिंग चलती है, उसी को लेना है, उसकी जो कुछ नहलाना है, साफ सुफ रखना है, सुगंधित रखना है, और क्या क्या करना है। तो कहते देह की सेवा से विरक्त होकर मैं जीव हूँ और मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, और ये अभी सुना ना आपने, ये देह क्या है, अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है, उसमें हर समय अनंत परमाणु आते हैं और हर समय अनंत परमाणु जा रहे हैं, जैसे कर्मों में आना जाना चल रहा है, शरीर के भी अनंत परमाणुओं का आना और जाना चल रहा है, वहां कॉन्स्टेंट रहने वाला तो मैं हूँ, परंतु ये भूल जो आ रही है और जा रही है उस रूप में हूँ ऐसा मान लेते हैं, और फिर उसका क्या करना है, हैप्पी बर्थडे मनाना है, किसका, जो भूल गई उसका, क्या आ रही उसका, वो सादा बर्थडे नहीं होता, हैप्पी बर्थडे होता है। तो देह की सेवा से विरक्त होकर जीव में ही यानी अपने में ही जो चर्या होती है उसे ब्रह्मचर्य जाना। आगे भी पद्मनंदी पंचविंशतिका नाम का जो एक शास्त्र है जो पद्मनंदी आचार्य ने लिखा है उसमें लिखते हैं, ब्रह्म शब्द का अर्थ निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्मा है, यानी मैं तो राग द्वेष से रहित ऐसा निर्मल ही हूँ, यहाँ स्वभाव भाव की बात है, पर्याय में राग द्वेष है उसके रहते हुए अपना स्वभाव अपने ख्याल में बुद्धि में लेना है, तो मैं उस रूप हूँ ये स्वीकार करना है, उस आत्मा में लीन होने का नाम ब्रह्मचर्य है। तो रागी द्वेषी होते हुए तो पर ज्ञान और राग द्वेष इसमें जो भिन्नता है वो भिन्नता हमारे ख्याल में आना चाहिए, जिसको शास्त्र में कहते हैं प्रज्ञा की छैनी द्वारा, छिन्नी समझते हैं ना, क्या करते हैं वो पटकते हैं और उसमें हथौड़ा मारते हैं तो दो छकले हो जाते, पत्थर भी ऐसे उसके ऐसे अलग अलग स्लैब्स तैयार हो जाते। तो कहते ऐसे ही ज्ञान जुदा है और ये राग द्वेष के परिणाम जुदे है, वो जो उसकी संधि है सांध है, तो ये अपनी बुद्धि रूपी छैनी उसमें डालकर ज्ञान और राग की भिन्नता लक्षणों के द्वारा जानना है, इसको कहेंगे भेद ज्ञान करना है। तो यहाँ कहते हैं कि उस आत्मा में लीन होने का नाम ब्रह्मचर्य है, जिस मुनि का मन अपने शरीर से निर्ममत्व हो गया, क्योंकि उत्तम शब्द मुनि की अपेक्षा बताया है और ये जो अन्य अन्य जो ग्रंथ है उसमें मुनियों की अपेक्षा से खास यहाँ वर्णन किया है, उसी के वास्तविक ब्रह्मचर्य होता है। वास्तविक ब्रह्मचर्य ने निजात्मा में लीन होना, और आत्मा किसको कहा, बार बार ये क्यों कह रहे, क्योंकि मैं कहने से आत्मा, मैं आत्मा हूँ, पर मैं आत्मा हूँ तो मैं कैसा हूँ कि जिसका लक्ष्य करना है उसके लिए ये सात तत्वों की भाषा में कहना है, मैं जीव तत्व और मुझे ये आश्रव तत्व जुदा है, आश्रय तत्व में किसको लेना है? मोह राग द्वेष के परिणाम। शुभ भाव भी आश्रय है, मैं उनसे जुदा हूँ, ये मेरे पर्याय में है, परंतु मैं उस रूप नहीं हुआ, क्योंकि वो समय मात्र का है और एक एक समय में दूजा दूजा होता है, और मैं कैसा हूँ तो मैं कायम रहने वाला स्वभाव भाव हूँ। तो उस स्वभाव, क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, हमको ध्यान करना है, तो स्थिर चीज का करेंगे तो घूमने वाले की चीज का करेंगे। हमें आश्रय लेना है, सहारा लेना है, तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट का ले सकते हैं कि जो कोई स्थिर है, हम बस में जाते हैं और खड्डे बड़े बहुत है, तो बस में हमको जगह नहीं मिली बैठने को, तो किसको पकड़ते हैं? सामने वाले के कंधे को पकड़ते हैं, तो वो गिर गए तो हम भी गिर गए। तो वहां जो भी स्थिर है, ये सीट का जो कोई हैंडल होगा या ऊपर कोई डंडा होगा, उसको पकड़ेंगे। ऐसे ही स्थिर कायम एक सदृश रहने वाला तो क्या है? स्वभाव भाव है, उसका अगर हम ध्यान करेंगे तो ही पर्याय में धर्म की प्राप्ति हो। उसका ध्यान कहो, उसमें एकाग्र कहो, उसमें चरणा कहो, बात देखी है, और उसी को यहाँ ब्रह्मचर्य कहने में आता है, और यही ब्रह्मचर्य धर्म है। हाँ, जिसको ऐसे धर्म प्रकट होता है, उसके जो स्वभाव रूप जो है, उसमें हमने देखा था इंद्रिय ज्ञान, तो यानी इंद्रियों की पर सन्मुखता होती है, इंद्रियों के द्वारा जो उपयोग अपना ज्ञान बाहर जा रहा है, उसको वहां से हटाकर अपने में लगाना है। तो ब्रह्मचर्य जब कहेंगे, ये तो ब्रह्मचर्य ने आत्मा में लीनता, वो है निश्चय। और व्यवहार से ब्रह्मचर्य किसको कहेंगे? पांचों ही इंद्रियों के विषयों को त्याग कर आत्मा में जीना। एक नास्ति का कथन होता है, एक अस्ति का कथन होता है। नास्ति से यानी हटाने की बात करेंगे तो उपयोग कहाँ लगा था? सारे स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय जो है, उसके विषयों के प्रति उपयोग लगा था, अपना ज्ञान उसी में जा रहा था। तो वहां से हटकर, सभी इंद्रियों के विषयों से हटकर अपने आत्मा में लीन होना, यही ब्रह्मचर्य। तो व्यवहार से जो बाह्य इंद्रियों से हटा है, जिसको हम इंद्रिय विजय भी कहते हैं मुनिराजों की अपेक्षा, उसको ये ब्रह्मचर्य कहेंगे। केवल एक विशिष्ट क्रिया विशेष का हमने नहीं किया तो हम ब्रह्मचारी हमेशा भी नहीं थी, तो वो बात नहीं है। हमें एक बुजुर्ग मिले थे, बहुत पहले की बात है, 75-78 तभी की बात होगी। तो नहीं नहीं नहीं, हम ब्रह्मचर्य अभी हम पालेंगे। क्यों पालेंगे? वो बहुत वृद्ध थे, मैं अभी हमने ब्रह्मचर्य पालना नक्की कर लिया। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि मरते हैं और देव में जाते हैं तो मिनिमम 3200 देवांगना मिलती है। वैसे तो ऊपर ऊपर के देवों में करोड़ों होती है, परंतु मिनिमम पॉसिबल तो 32 तो वहाँ देवियाँ मिलती है, इसलिए तो ये ब्रह्मचर्य का है का। हमने शादी नहीं किया, हमने इसी से छोड़ दिया तो हमने ब्रह्मचर्य पाला, ऐसी जो कुछ कल्पनाएं हैं वो बिल्कुल गलत है। तो इस तरह हमने 10 दिनों तक 10 अलग अलग लक्षण देखे थे, लक्षण देखे परंतु धर्म तो एक ही है, और वो वीतरागता ही धर्म है। हमारा स्वभाव तो वीतराग स्वभाव है, सर्वज्ञ हमारा स्वभाव है, परंतु वो स्वभाव केवल स्वभाव होने से उसका अनुभव नहीं होता, उससे सुख नहीं होता है, परंतु वो स्वभाव जब वैसा पर्याय स्वभाव जैसी पर्याय प्रकट होगी तो हम पर्याय में सुखी हो जाएंगे। पर्याय में हमारा अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय सुख प्रकट होगा, उसके लिए पहले स्वभाव को हम आगम से जानेंगे, उसको भी जानना कहेंगे। तो हमने स्वभाव को जानने के लिए जीव तत्व क्या है, अजीव तत्व क्या है, आश्रय बंध संवर क्या है, वो हमने आगम के द्वारा, भगवान के उपदेश के द्वारा हमने जाना, उसको भी जानना कहेंगे, वो हमने जान लिया, पर वो कैसा है? हमने उस संबंधी जानकारी हासिल की। अब जब जानकारी हासिल करते हैं तो आगे की स्टेप क्या है? हम अपने बुद्धि से उसका निर्णय करेंगे कि यहाँ तो ऐसा कहते हैं, और मैंने अब तक अपने को क्या माना था, और यहाँ तो ऐसी बात बताते हैं, और वो भी भगवान की वाणी में ये बात आई है, तो हम उस पर विचार करेंगे और उसका निर्णय चलेगा अपने मन ही मन। तो निर्णय तक पहुँचते हैं तो ये सारे जो सिद्धांत, अभी हमने बहुत सारे सिद्धांत देखे, द्रव्य का स्वरूप क्या है, गुण पर्याय का स्वरूप क्या है, क्रमबद्ध क्या है, निश्चय उपादान क्या है, चार अभाव क्या है, छह सामान्य गुण क्या है, निमित्त उपादान क्या है, ये सभी जो सिद्धांत जो हमने सीखे, देव गुरु और शास्त्र का स्वरूप कैसा है, तो इसके द्वारा हम तत्व विचार में लीन होते हैं। तो कर्मों में स्वयमेव ऐसी अनेक अवस्थांतर होते हैं कि जैसे यहाँ जीव में सम्यक्त्व प्रकट हो जाता है, और समय तो प्रकट होता है, उसी समय आत्मा की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, और उसके द्वारा ये दृष्टि होता है कि यहाँ समय दर्शन प्रकट हुआ है। तो इसके लिए हमें आगम का अभ्यास आवश्यक है, किसी दूसरे के लिए नहीं है, समाज के लिए नहीं है, क्योंकि अपना हमें कल्याण करना है। वो दौलत राम जी कहते हैं, जो चाहो अपनो कल्याण, क्योंकि मनुष्य वो कितनी दुर्लभ है, वो बात आप बार बार सुन रहे हैं, और इसकी दुर्लभता ख्याल में आने पर अपना उपयोग कितना वेस्ट हो जा रहा है, क्योंकि पूरे 24 घंटे की हमारी जो कुछ रूटीन जो है उसमें हम अपने लिए कितना समय दे पाते हैं, अपने विचार कितने मिनटों तक अपने स्वयं के विचार भी आते हैं, और ये पर के जो हमारे हाथ में नहीं है, ऐसी चीजों के लिए हम कितना अपना समय का योगदान देते हैं, क्योंकि ये भले वो बाहरी कार्य चलते रहेंगे पर अंतरंग जो विचारधारा है वो तो स्वाधीन है। तो बारंबार तत्व का अभ्यास किए बिना उसके विचार भी नहीं आएंगे। जब तत्व का अभ्यास होता है तो स्वयं में वो उसकी विचारधारा चलती रहती, उसके लिए कुछ बाहर की सब चीजें छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, वो बाकी कार्य भी चलते रहेंगे और यहाँ तत्व की धारा भी चलती रहेगी और जीव को अल्पकाल में सम्यक्त्व की प्राप्ति होती, फिर तो निश्चिंत हो जाता है और फिर आगे का मार्ग भी उसका प्रशस्त हो जाता है। इस तरह से जो हमने आज तक ये जो 10 अलग अलग लक्षणों के द्वारा धर्म का स्वरूप समझा है, वो धर्म का स्वरूप तो हमने आगम के द्वारा समझा है, अब इसको अपने पर्याय में प्रकट करने का पुरुषार्थ हर जीव करे, इसी भावना से अभी हम विराम लेते हैं। बोलो 2400 भगवान।